آپ SBS اردو کے ساتھ ہیں۔
آسٹریلین حکومت اعلیٰ تعلیم کی مد میں ہر سال یونیورسٹیوں کو کروڑوں ڈالر فراہم کرتی ہے تاکہ مختلف شعبوں میں زیادہ سے زیادہ ماہرین کی تعیناتی کی جا سکے۔ ان اسکالرشپس اور فنڈنگ سے مقامی طلبہ کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ریسرچ طلبہ بھی مستفید ہوتے ہیں، مگر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ بہت سے بین الاقوامی اسکالرس یہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اپنے آبائی ملک یا کسی اور ملک چلے جاتے ہیں؟ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہم نے تین ایسے ریسرچرز سے گفتگو کی ہے جنہوں نے آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد اپنے وطن کو فوقیت دی۔ ڈاکٹر ذیشان نے آسٹریلیا سے لینگویج پالیسی میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی۔ اس وقت وہ بلوچستان یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا کہ ان کی وطن واپسی کی کیا وجوہات تھیں تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کو وطن کی محبت واپس لے آئی۔
میری ہمیشہ سے خواہش یہ رہی ہے کہ میں فورن یونیورسٹی سے پڑھوں۔ مثال کے طور پہ میرا فل برائٹ پہ یو ایس اے سے ایم فل ہے، تب بھی میں نے یہی سوچا تھا کہ میں پڑھنے کے لیے ضرور جاؤں گا۔ اسی طرح میرا ارادہ شروع سے یہی تھا کہ میں آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کروں گا اور اپنے وطن واپس آؤں گا۔ یہ میں نے کیوں فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان دوبارہ آؤں، ایکچولی یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی زندگی کے فلسفے پہ اور زندگی کے آبجیکٹو پہ۔ میرا زندگی کا فلسفہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کس طرح آپ اپنی ذات سے بالاتر ہو کے سوچیں۔ اگر میں صرف اپنی ذات کا سوچوں گا تو لازمی بات ہے پھر تو فارن کنٹریز کی جو لائف سٹائل ہے ساری چیزیں بہت بہتر ہیں۔ لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں آؤں گا، میں اپنے لوگوں کو پڑھاؤں گا اور میرے اپنے لوگوں کو بہت ضرورت ہے کہ ہمارے جیسے لوگ آئیں اور ان کو پڑھائیں اور ان کے لیے اپرچونیٹیز فردر بنیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ آسٹریلیا کو ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے کہ بین الاقوامی اسکالرز آسٹریلوی تحقیق کے ماحول میں ٹرین ہوں اور اپنے اسپیشلائزڈ ایریا میں کام کر سکیں۔
اب مثال کے طور پہ میں اپنی اگزامپل لیتا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں کی ہے، آلریڈی میں گورنمنٹ جاب اسسٹنٹ پروفیسر پاکستان میں تھا، میں چھٹیوں پہ گیا تھا، اسٹڈی لیو پہ گیا تھا۔ اب اگر ریسرچ اسکالرس کو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو کس طرح وہ رک سکیں تو ان کے لیے اسی لیول کی جاب اپرچونیٹیز کیا کریٹ کر سکتی ہے آسٹریلین گورنمنٹ؟ میں مثال کے طور پہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد میں کوئی مزدوری تو نہیں کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پہ میں نے دیکھا لوگ جو ہے اوبر بھی کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ کی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور بھی کام کر رہے ہیں، لیکن میرے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ جس لیول کی جاب ہے کیا وہ اسٹوڈنٹ گورنمنٹ پرووائڈ کر سکے گی۔ دوسری امپورٹنٹ بات میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اسٹڈی لیو پہ جاتے ہیں نا تو ہم ایک کمٹمنٹ کر کے جاتے ہیں، اگریمنٹ کر کے جاتے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ۔ مثال کے طور مجھے تو فلی فنڈڈ تھی اس کی یہ میری پی ایچ ڈی، لیکن پھر بھی میں تنخواہیں لے رہا تھا اپنی یونیورسٹی سے 4 سال کی، تو میرا ایک ایگریمنٹ تھا ان کے ساتھ کہ میں آ کے سرو کروں گا۔ اب آسٹریلین گورنمنٹ کیا کر سکے گی جتنی میں نے تنخواہیں لی ہیں؟ کیا وہ واپس کر سکے گی؟ مثال کے طور پہ کوئی دوسرے کینڈیڈیٹ ہے، وہ شاید مشکل ہو ان کے لیے، لیکن اگر ایسا کچھ کر سکتی ہے تو بڑی اچھی بات ہوگی۔
دوسری جانب ڈاکٹر عظمیٰ ہیں جنہوں نے کمپیوٹر سائنسز میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جغرافیائی لحاظ سے اپنے آبائی وطن سے دوری نے انہیں آسٹریلیا چھوڑنے پر مجبور کیا۔
اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آسٹریلیا میں جو کوالٹی آف لائف ہے وہ بہت اچھا ہے، اور آگے بڑھنے کے بہت سارے مواقع بھی آپ کو ملتے ہیں پی ایچ ڈی کے بعد، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے نکات ہیں کہ جس کی وجہ سے آسٹریلیا کے اوپر باقی ملکوں کو ترجیح دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آسٹریلیا جو ہے وہ ایک پوری دنیا سے بہت، ایک اپنے جغرافیہ کی وجہ سے پوری دنیا سے بہت الگ تھلگ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ کرونا کے دنوں میں جب گلوبل پینڈیمک آیا ہوا تھا تو دنیا کے جو جمہوری ممالک میں में ऑस्ट्रेलिया शायद वो वाहिद मुल्क था जिसमें फोर्स्ड बैन था फ्लाइट्स के ऊपर। तमाम दुनिया खुल चुकी हुई थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने लोगों को तो महफूज रखा, लेकिन वो जो 2 साल तक पूरा मुल्क बंद कर दिया वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स के लिए मेरे ख्याल है काफ़ी एक मुश्किल सूरत हाल थी, क्योंकि हमारे आप कह लें कि बड़ी उम्र के वालदेन जो हैं वो मुश्किल में थे और अकेले थे, और मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल उस वक्त हाई हो गया था, जिसमें मैं बहुत सारा सोशल मीडिया फॉलो कर रही थी और मैंने देखा कि बहुत से लोग जिसको हम कहते हैं फेंस पे बैठे होते हैं, बहुत से लोगों ने ऐसा इरादा किया कि वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर दूसरे ममालिक जा बसेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि वही एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे लिए भी रहा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी किसी दूसरे मुल्क में जाके सेटल होने की और मैंने उसको वेल किया।
वो समझती हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे बहुत से ममालिक हैं जहां उनकी तहकीक से मुतल्लिक बेहतर मौके मौजूद थे।
और अगर हम रिसर्च की बात करें तो बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं है कि आप नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में रिसर्च अपॉर्चुनिटी स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, और कनाडा में स्पेशली रिसर्च में फंडिंग ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आप ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटियों का एक सर्वे करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी, कम कम से कम जो मेरी फील्ड थी, टेक्निकल जो फील्ड थी, वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ के डोमेस्टिक स्टूडेंट्स आपको कभी, मतलब मैं वहाँ पर 4 साल मैंने कंप्यूटर साइंस में PhD किया है, और 4 सालों में मेरी किसी एक भी डोमेस्टिक स्टूडेंट से मुलाकात नहीं हुई जो PhD कर रहे हो, सबके सब बाहर के लोग थे। तो वो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स कहाँ हैं, इसका मतलब ये है। और जब मैंने पता किया तो ये पता चलता है कि अपना बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद लोग ऑस्ट्रेलिया से को छोड़कर नॉर्थ अमेरिका आ जाते हैं या यूरोप आ जाते हैं। तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया में वो स्टैंडर्ड ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है, या आपके लिए के रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ वो नहीं है जो इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में या यूके में आपको मिलती हैं।
इसके अलावा इमिग्रेशन कानून की सख्ती ने भी उनकी हौसला शिकनी की।
इसके अलावा आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के जो इमिग्रेशन लॉज़ हैं वो फैमिलीज़ के लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, और आप ख़ुद तो आ सकते हैं लेकिन फिर आपके माँ बाप जो इस वक्त वालदे जो बड़ी एज में हैं उनको आप लेकर नहीं आ सकते ऑस्ट्रेलिया। इसके मुकाबले में आप कनाडा में जो जिधर मैं मूव इन की हूँ, यहाँ पर आपके पेरेंट्स को बहुत आसानी के साथ 10 साल तक का विज़िट वीज़ा मिल जाता है, उनकी परमानेंट रेजिडेंसी इतना मुश्किल नहीं है। से आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स ही आपको नज़र आते हैं, बहुत एक हाईली एजुकेटेड और हाईली स्किल्ड क्लास नज़र आती है, जबकि इसके मुकाबले में, क्योंकि अब मैं कनाडा में सेटल हूँ, मुझे पाकिस्तान के हर तबके के लोग यहाँ पर नज़र आते हैं, और बुनियादी वजह उसकी यही है कि यहाँ के फैमिली इमिग्रेशन लॉस बहुत आसान है ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में।
डॉक्टर नवीद नूर आगा खान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पर फायज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से सोशल मेडिसिन में PhD मुकम्मल की।
ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छा मुल्क है, और मेरे ख्याल में कोई 90% लोग चाहते हैं कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने आए तो इसको अपना घर बनाएं। मैं इसलिए पाकिस्तान आया था क्योंकि जो प्राइमरीली जो मेरी स्कॉलरशिप थी वो एक जॉइंट स्कॉलरशिप थी, जिसकी कुछ फंडिंग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आती थी और कुछ फंडिंग जो है वो यूनिवर्सिटी पे करती थी। सो एज पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट पाकिस्तान में आके मुझे सर्व करना था।
उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलवी हुकूमत हार्ड साइंसेज और स्टेम के रिसर्चर्स को ज़्यादा मौके फराहम करती है, जिससे बिहेवियरल या सोशल साइंसेज के स्कॉलर्स की हौसला शिकनी होती है।
अच्छा, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स थे। मिसाल के तौर पे हर डिसिप्लिन या हर शोबे के अंदर के जो PhD स्कॉलर्स होते हैं उनकी एक अपनी डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल स्टेम फील्ड्स हैं या बेसिक साइंसेस के फील्ड हैं, वहाँ पे प्रोफेसर्स के पास फंडिंग बहुत ज़्यादा होती है और उनको लोग चाहिए होते हैं जो उनके लिए काम करें। और एकेडेमिया में इफ़ यू हैव टू प्रोग्रेस आपको 3 चीज़ें करनी होती हैं। आपको नंबर 1 आपको पब्लिकेशंस चाहिए, नंबर 2 आपको ग्रांट्स चाहिए, इसके अलावा आपको थोड़ी सी प्रमोशन चाहिए, थोड़ी सी आपको मीडिया प्रेजेंस चाहिए, जो कि बेसिक साइंसेस के एरिया में बहुत ज़्यादा है। सो सबसे पहले तो आई थिंक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इंटरनेशनल स्कॉलर्स के लिए कोई पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स इनको स्पेसिफाइड पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स इनको ऑफर करने चाहिए एंड विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव. अब होता ये है कि जब आप ऐसी फेलोशिप्स आपको मिलती हैं तो वहाँ पे आपको मज़ीद ग्रो करने का मौका मिलता है. यू सेट योर सेल्फ अप टू बिकम एन एकेडमिक लीडर.
दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों के साथ कोलेबोरेशंस होती हैं, इसलिए उन्हें चाहिए कि जब वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन करें तो अपनी शरायत पर तालिबे इल्मों की मसावी फंडिंग को यकीनी बनाएं।
एक और चीज़ जो मैं जिस पे एम्फसाइज करना चाहूँगा निदा वो ये है कि यू नो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने अपने मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों से कुछ पार्टनरशिप्स की. मैं पाकिस्तान की मिसाल देना चाहूँगा. पाकिस्तान में एक इदारा है हायर एजुकेशन कमीशन, तो HEC के कई ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप्स हैं और पार्टनरशिप का मकसद ये है कि जी पाकिस्तानी स्कॉलर्स वहाँ पे आएंगे, PhD करेंगे और PhD करके वापस चले जाएंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. बट एट द सेम टाइम आप ये देखें कि जो हायर एजुकेशन कमीशन जितना स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है अपने लोगों को, वो तकरीबन उससे तकरीबन हाफ होता है जो कि ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में यूजली स्टाइपेंड दिया जाता है. जब मैं पढ़ा करता था UNSW में तो तब यूजली जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज होती थी वो तकरीबन आई थिंक $2400 या $2500 यू नो महीने के स्टाइपेंड दिया करती थी. एट द सेम टाइम जो HEC का जो स्टाइपेंड होता था वो तकरीबन 1600 से भी कम होता था. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टाइपेंड एज वेल. आप वहाँ पे पार्टनरशिप्स करके आप स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं, वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट से या हायर एजुकेशन कमीशन से आप निगोशिएट नहीं करते कि कम अज़ कम आप लोगों को इतना स्टाइपेंड तो दें कि वो वहाँ सर्वाइव कर सकें, इतना स्टाइपेंड तो दें जितना हम उनको देते हैं.
ये पॉडकास्ट SBS उर्दू के सामाइन के लिए निदा तहसीन ने तैयार किया है.
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए.